श्रीमती राधिका जी के अंगों में ऐसी सुगंध है कि कृष्ण समझ जाएंगे ये गंध कौन सी है, उसको रोका नहीं जा सकता। वो हवा के तरंग में उड़ती हुई कृष्ण के नाकों तक आएगी, कृष्ण उसी को सूत्र मान करके उधर ही चले। इसलिए हवा के सुगंध में श्रीमती राधिका के अंगों का गंध पा करके उधर में चल पड़े। और दूसरा था क्या, जमीन पर ऊपर देखते जाते हैं कहीं उनके चरणों के चिन्ह है, यानी इसीलिए पीछे से गोपियों ने कृष्ण का पद चिन्ह देखा और उसमें राधा जी के चरण के चिन्ह को भी देखा। देखा दिया राधे रखो हो प्राण, बलिया कांदे कानने कान। देखा दिया राधे, कृष्ण श्याम क्या कह रहे हैं मधुर बंसी में, देखा दिया राधे मैं मर रहा हूं, आप मुझे देखा मुझसे दर्शन दें। रखो प्राण बलिया कांदे कानने कान, कानन में कान, कृष्ण विरह में रोते हुए उनको पुकारने लगे, ढूंढने लग गए। निर्जन कानने राधा रे धरी, श्रृंगार भट्ट के पहले कृष्ण ने राधा जी को उनके अंग के गंधों से और उनके पद चिन्हों से जाकर के पकड़ लिया। श्रृंगार बन के बट के नीचे छाया में वो भी शाम कर रही है, कैसे भी शाम कर रही है, लंबी लंबी आहें छोड़ रही है। आज हमारा इतना अनादर, लंबी लंबी सांसें भर रही और सोच रही है, देख रही है कब कृष्ण आ रहे हैं, श्याम कब आ रहे हैं और उनको मनाएंगे, इसलिए वो प्रतीक्षा कर रही है। और इतने में श्याम निर्जन में उनसे मिले, निर्जन कानने राधा रे धरी, मिलिया परान जुड़ाय हरी, उनको मिले। हमें छोड़कर के कहां चली गई। इस प्रकार से राधा जी को मनाने की चेष्टा करने लगे और बोले उसी समय में, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम धेहि देहि पद पल्लम। आप परम उदार हैं, हमारे दोषों को ऐसा मत कीजिए, हमने अपराध किया है मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, किंतु भविष्य में ऐसा अपराध नहीं होगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। इतने कहने से प्रसन्न हो गई, फिर वहां पर हो गई स्वाधीन भर्तृका, वहीं पर कृष्ण ने उनको श्रृंगार इत्यादि किया, इसलिए वो श्रृंगार वत है। बोले तुहु बिना, कृष्ण कह रहे हैं उनको मनाते हुए, बोले तुहु बिना कहां रा, किसका रा, मैं रास नहीं करता, किसका रास, तुम्हारे लिए ही तो ये रास। तुहु लागी मोर ब्रज बास, मैं ब्रज में केवल तुम्हारे लिए हूं, किसी दूसरे के लिए नहीं, ब्रज में तुम्हारे लिए बास। गैया किस लिए चराता हूं, केवल तुम्हारे दर्शनों के लिए। मैं गैयों को पानी पिलाने के लिए गोपी घाट में जाता हूं, यमुना के किनारे घाटों पर, किस लिए, वहां पर तुमको देखता हूं। बनो जंगलों में गैयों को लेकर के इधर उधर जाता हूं, राधा कुंड में श्याम कुंड में गिरिराज वहां पर, और वो कौन गिरा सूर्य कुंड इत्यादि आपके दर्शन हुए, इसीलिए इसलिए तुम्हारा लगी मोर पर जबार। एहन राधिका चरण तले भक्त विनोद कांदिया बोल, ऐसी जो कृष्ण के द्वारा आदृत श्रीमती राधिका पूजित और आराधित हैं, ऐसे श्रीमती राधिका जी के राकुल चरणों में श्री भक्त विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, रो रो करके उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे कह रहे हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, तुहा गण माझे हमारे गणी किं करी करिया राखो हो आपन, आप कृपा करके राधा जी इनकी पुकार सुन करके झट दर्शन दिया और पुकार फिर उनसे बोली, क्या चाहते हो, बर मांगो क्या चाहते हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हा देविका तू भर गदगद याद देवा, जाचे निपत्त भूवि दंडवत उद्भटारती अश प्रसाद मुद्भक्त जनस्त कृत्वा गांधार्मिके निज गणे गण। पर भक्ति विनोद ठाकुर ने रूप गोस्वामी का यह पद ले लिया और उनके चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना क्या क्या है? वहां गण मार अपने गण के बीच में, तुम्हारे गण कौन कौन से? बहुत से गण हैं, उसमें ललिता जी का गण सबसे श्रेष्ठ, राधा जी युद्धेश्वरी हैं और इनके गण हैं कितने हजारों लाखों इनके गण हैं। उन गणों में सर्वश्रेष्ठ ये राधा जी का गण, ललिता जी, और उस गण में विशाखा जी प्रधान हैं और उनके अधिनायकत्व में बहुत सी सखियां हैं, उसमें रूप मंजरी रति इत्यादि ये सब मंजरियां भी उस गण, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ये गण है। कहते हैं उसी गण में हमको उन लोगों की किंकरी के रूप में हमारा भी नाम आज रजिस्टर में अपने लिख लो, बस यही हमारी इच्छा है। निज गणे गण नाम विधि भक्ति विनोद ठाकुर सबसे कर, और भी उन्होंने लिखा है अपने श्री राधा कृष्ण पद कमले मन चरम के मन लभिवे चरण, वही अंतिम पद में लिखा है सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे सेवा मृत कर मोरे दान ललिता सखीर अजोग्या किंकरी विनोद धरी सेवा। तो हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर को हम लोग धरेंगे उनके चरण, और भक्ति विनोद ठाकुर को चरण को पकड़ने के लिए प्रभुपाद चाहिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और उनको पकड़ने के लिए अब अपने गुरु जी को हम लोग धरे, अपने अपने गुरु जी को पास, ये गुरु जी अनुग्रह करके हमको कमल मंजरी के चरणों में हमें दीजिए, वो कृपा करके हमको विशाखा इत्यादि रूप मंजरी इत्यादि को दें, और वो लोग सब हमें विशाखा जी के पास, विशाखा जी उनको क्या करेंगे ललिता जी के पास। और ये संजय आज एक सुंदर एक नवेली सखी मैं लाई हूँ आपके चरणों की किंकरी के लिए, आप इसको ग्रहण कर, राधा जी प्रसन्न होकर के उसको ग्रहण कर, वो कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकती ललिता जी को बात, इसीलिए ललिता जी को ये प्रार्थना कर रहे हैं तुहा गण माझे हमारे गणी किंकरी करिया राखो आप। इसलिए हम लोग आज राक्षसथली में गए, राक्षसथली में हम लोग प्रार्थना करके और वहाँ के स्थानों के महिमा हम लोग शंकर जी का इत्यादि का बतलाया, और फिर वहाँ से होते हुए हम लोग ज्ञान गुदड़ी में गए, ज्ञान गुदड़ी से लाला बाबू जी का मंदिर, और वहाँ से फिर रंग जी का बैकुंठ होते हुए फिर गोविंद जी के मंदिर में हम लोग पहुंचे। गोविंद जी के मंदिर में उसकी गाथा ये है, चैतन्य महाप्रभु के समय में इसको कोई जानता ही नहीं था कि ये वृंदावन है, कोई नहीं जानता था, बल्कि उनसे अधिक उम्र वाले वल्लभाचार्य जी थे, वो काम्यवन को ही अपना अधिक निवास, काम्यवन ही वृंदावन है, काम्यवन में रह करके वहीं पर गोकुल चंद्रमा माने कृष्ण का मंदिर वहां पर, और उसी में वो रह करके भजन करते। पीछे से हमारे गोस्वामी ने उनको श्रीनाथ जी का विग्रह दिया, पीछे से वो श्रीनाथ जी को गोवर्धन में पूजा करते थे, और उन्होंने गोकुल में अपना प्रधान स्थान बनाया, गोकुल माने महावन के अंतर्गत यमुना के किनारे वहां पर बनाया। इन लोगों ने भी उनका कोई भी आश्रम और ये सब वृंदावन में नहीं, हमारे भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी से पहले वृंदावन ये जो अभी ये है इसमें कोई भी गोई गोस्वामी और कोई भी भक्त लोग नहीं आए, वृंदावन जानते ही नहीं थे। महाप्रभु जी ने रूप सनातन को और भूगर्भ गोस्वामी इत्यादि को इंगित दिया था जहां पर यमुना जी होंगी, यहाँ पर बंसीवट राक्षसथली होगी, यहाँ पर काली हरद होगा, यहाँ पर यमुना तीन तरफ से जिस स्थान को घेर करके रखे, पास ही में गिरिराज गोवर्धन होंगे, वहीं पर मधुवन पास में होगा, यहाँ पर मानसरोवर है, ये सब वृंदावन है, ये पंचकोसी और 84 कोसी भी है, 16 कोसी भी है, 16 कोस में ये सब स्थान उसके अंतर्गत में है, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना इत्यादि सब उसके अंतर्गत में है, वृंदावन के अंतर्गत। तो वल्लभाचार्य ने वहां पर माना, रूप सनातन को भेजा आविष्कार करने के लिए। इसके पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी आए, विभिन्न जगहों में उन्होंने भजन किया, किंतु उन लोगों ने वृंदावन का प्रकाश उस समय उतना नहीं किया। जब रूप सनातन जी आए तो महाप्रभु जी ने उनको आदेश कर रखा था ये वृंदावन को प्रकाश करना और वहां के सिद्ध विग्रहों को भी प्रकाश करना और भजन की रीति नीति भी प्रकाश करना, ब्रज के भावों को प्रकाश करना, ग्रंथों का प्रकाशन भी करना। इसलिए रूप सनातन दोनों यहाँ पर वृंदावन में आए। रूप जी रहे यहीं पर, जहां पर हम लोगों का मठ है, राधा दामोदर जी का जहाँ मंदिर है वहीं पर रहे, सेवा कुंज के अंतर्गत थी, ये भी सेवा कुंज के अंतर्गत। और सनातन जी जमुना के किनारे मदन टेर जहाँ है वहां पर रहे, यहाँ पर मदन मोहन जी का ये मंदिर पास में। और हमारे गोपाल भट्ट जी रहते थे राधा रमन के पास, ये लोग पीछे आए। इसके बाद में रघुनाथ भट्ट आए, हम लोगों के पास ही में उनका स्थान है, वहां पर कुछ उनके चिन्ह है उनके रहने का। इसी तरह से सब लोग एक जगह नहीं रहते थे, किंतु मिलित होते थे रूप गोस्वामी के संसद के रूप में, वही राधा दामोदर अलग अलग सब, जैसे महाप्रभु अलग अलग सबको रख दिया था पुरी में, ऐसे ही कोई कलह न हो, कोई गड़बड़ी न हो, किसी पर कोई भार न हो, इसलिए उस समय के रीति के अनुसार में रख दिया। सभी भजन प्रिय थे इसलिए। तो
तो
रूप सनातन गोस्वामी पहले आए यहाँ पर, हाँ, तो रूप पहले सनातन गोस्वामी आए और मदन मोहन जी को प्रकाश किया, उसको संबंध में हमने बतलाया। आज हम गोविंद जी कैसे प्रकट हुआ इसके संबंध में बतलाया। ये गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केशव जी आदि केशव मथुरा में, हरदेव जी गोवर्धन में, कामवन में कामेश्वर महादेव, गोपीश्वर महादेव यहाँ, चकलेश्वर महादेव उधर में गोवर्धन में, और भी जितनी लीला स्थलियां हैं बज्रनाथ जी ने गर्गाचार्य और शांडिल्य ऋषि इत्यादि के सहायता से परीक्षित महाराज जी के साथ में इन सब का आविष्कार किया। और वहां पर कहीं पर कुंड बनाए, कभी चरण चिन्ह स्थापित किया और कहीं श्री मंदिर इत्यादि प्रकाश। उन्होंने गोविंद जी का शिव विग्रह भी प्रकाशित किया था। अब कालांतर में मुसलमानों के समय में करीब 4,500 वर्ष के बाद में मुसलमानों ने उनको तोड़ने की चेष्टा की मंदिरों की, और उन लोगों के भय से पुजारियों ने कहीं उनको छिपा दिया, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब विग्रहों को, तो गोविंद जी को भी छिपा दिया। रूप गोस्वामी जी जब आए तो चिंता करने लगे, मदन मोहन तो प्रकाशित हो चुके हैं, गोविंद जी कहीं ना कहीं होंगे, सनातन गोस्वामी जी संबंध के गुरु हैं, इसलिए संबंध के आदि देवता मदन मोहन जी का प्रकाश किया। रूप गोस्वामी ये अभिधेय तत्व के, भक्ति तत्व के आचार्य, महाप्रभु जी ने उनको विग्रह और ऐसा अभिधेय तत्व रगानुगा भक्ति इत्यादि प्रकाशित करने के लिए कहा, वैसे ही ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किए। अब इनको गोविंद जी को आविष्कार करना था, ये कहां पर हैं। रूप गोस्वामी जी बड़े चिंतित हैं, आज ब्रजमंडल की परिक्रमा करने के बाद में ये वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। सोचा जी ने कहीं न कहीं वो ब्रज में ही होंगे, ब्रज को छोड़ करके नहीं गए। एकादशी का दिन कीर्तन हरिनाम करते हुए और चिंतित हुए से परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की पंचक्रोशी, रास्ते में उनको कोई मिल गया साधु, साधु सांवला साहब कोई मिला और कहे तुम बड़े चिंतित दिखते हो, क्या हो गया आप गोसाई जी, क्या बात है, क्यों चिंतित हो, वृंदावन में तो कोई चिंतित नहीं रहता। तो उन्होंने बतलाना नहीं चाहा, ये इसको बतला करके हम क्या करें, किंतु फिर भी जोर जबरदस्ती छल बल कौशल से उसने पूछ लिया, इनके मन के अंदर की बात जान ली। इन्होंने बतला दिया कि जरूर कहीं चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा है तो जरूर यहाँ पर गोविंद जी कहीं नहीं कहीं, किंतु कहीं भी मैं उनको पता नहीं लगा पा रहा हूँ ये कहाँ है। मैं उनकी फिर से आराधना पूजा इत्यादि प्रकाशित करना चाहता। तो उसने ये कहा, चलते चलते ये देखो यहाँ पर रास्ते में एक ऊंची टीला भूमि आएगी, ऊंची सी भूमि, और उसको कहते हैं गो माता का टीला, गो मा टीला, गो गौ मा, गो माता जी का टीला, टीला माने कहते हैं ऊंचे को। तो वहीं पर एक गाय थी 12 बजे दोपहर में वो आती है और आकर के खड़ी हो जाती है, और वहीं पर एक सुराख है जमीन में, वहीं पर खड़ी होकर के अपने दूध चुचुआती है और उसे दूध नीचे जमीन में चला जाता है और कुछ देर दूध वहां पर दे करके उसके भीतर में जो ठाकुर जी हैं गोविंद जी उन्हीं पर चढ़ा करके अब फिर चली जाती। तुम जाकर के वहां पर देखना ठीक दोपहर में ऊंचे टीले पर। ये वृंदावन के पूरब दिशा में है, बस इसके बाद में वो कहीं आगे पीछे हो गया और ये फिर पीछे देखने लगे तो कहीं मिला ही नहीं, खोजते 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 उसको हार गए। भाई ये कौन था, कहाँ चला गया, समझ गए ये इसमें कोई बात। सनातन गोस्वामी के पास में, सनातन गोस्वामी को बतलाया और यहाँ के आस पास के गांवों से कुछ गोपों को लिया और हल्के हल्के आघात से वहां पर खुदवाने लगे। थोड़ी देर में ही उसको देखा, वही जहां पर गैया एक दूध दे रही थी, बड़ी सुंदर काम धेनु गाय, थन एकदम पूरा दूध, मानो कितना है कोई अंदाजा नहीं, और वो दूध से तन से दूध गिर रहा है और वो छेद में नीचे चला जा रहा है। देख करके रूप गोस्वामी ने कहा यही वो स्थान है, बस उसको खुदवाया थोड़ा सा, खुदवा करके देखा, पहले सिर उनका मिला, फिर धीरे धीरे मिट्टी हटाते हटाते देखा जी गोविंद जी हैं। आज वही गोविंद जी जयपुर में, ठीक वैसे ही इनका पति भी विग्रह भी यहाँ पर विराजमान है जो आज हम लोगों ने देखा, ठीक वही विग्रह वहां से निकला। बड़े प्रसन्न हुए और इनकी पूजा आरंभ करते विधिवत, अभिषेक कराया, वही अभिषेक जो उन्होंने कराया, जो शास्त्रों से मंत्र उद्धृत किया, वही कृष्णाभिषेक एक ग्रंथ हुआ, कृष्णाभिषेक ही ग्रंथ है, वही ग्रंथ है। उसमें अभिषेक के जितने भी मंत्र हैं, कैसे अभिषेक किया, कैसे कैसे किया जाता है, उस विधि विधान से उसमें उन्होंने लिखा है, उसका अभिषेक किया गया। थोड़ी देर में चारों तरफ में खबर फैल गई, बड़े बड़े धनी मानी लोग आने लगे और जयपुर के सम्राट सुना, बड़े प्रसन्न हुए, रूप गोस्वामी से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा मैं इस मंदिर को बनाऊंगा। इस मंदिर को 7 या 8 स्टोरी तक, 7 तक ले गए, बहुत ऊंचा था, सेवा पूजा भी राजसिक ठाट से चलने लगी। और रूप गोस्वामी जी ने क्या किया, मंदिर का भार अपने पुजारी पर दे करके और अपने शिष्य पर, शिष्य माने हरिदास जी, उनको दिया, या गदाधर पंडित के शिष्य से है गदास ये हरिदास, उन पर ये सब दे करके आप फिर अपने कहाँ चले गए, हाराधे ब्रज देवी के चल लिते हे नंद सुनो। सनातन गोस्वामी जैसे ये भी उन पर सब भार दे दिया और देकर के इधर चल। कुछ दिनों में एक बात, उनकी पूजा खूब सुंदर रूप से चलने लगी। अब ये अकबर के समय या उनसे थोड़े से पहले बाबर के समय की बात है और इसके बाद में अकबर का शासन आया। उस समय में ये लोग यहाँ पर भजन करते थे। उन लोगों ने जीव गोस्वामी से प्रभावित होकर के और कुछ ये जमीन इत्यादि भी इसकी सेवा के लिए उन लोगों ने दिए। विशेष करके सनातन गोस्वामी से अकबर बहुत प्रभावित था। वो बीच बीच में वृंदावन में आता था। उधर उन्हीं का अधीन जयपुर के राजा थे, उन्होंने विशाल रूप में ये मंदिर बनाया। अभी जो हम लोग देख करके आए इसके चार स्टोरियां ऊपर के उसको ध्वंस कर दिया। केवल अभी तीन या साढ़े तीन है, अब गवर्नमेंट के अंदर है। इसके बाद में मूर्ति तो चली गई जयपुर में, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा बंकम बिहारी और सब दामोदर इत्यादि सब वहां पर। अब वो शून्य रह गया, बहुत दिनों तक शून्य रहा। हम लोगों ने अभी तक करीब गुरु महाराज जी के समय तक शून्य देखा था। पीछे से श्री चैतन्य महाप्रभु की विग्रह और अभी दो तीन वर्ष हुआ राधा कृष्ण का विग्रह उसमें रख दिया और गवर्नमेंट की तरफ से उसकी देख ली। तो वो हुआ क्यों, औरंगजेब आगरे आया था, यहां से प्रदीप देखा। कहां भाई प्रदीप जल रहा है इतना ऊंचा, आगरे से देखा या दिल्ली से देखा, काजी से हमारे शाम के शान के विपरीत ये काम हो रहा। हिंदुओं की हिंदुवानी बस बिगड़ गया। और साथ ही साथ में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र के शिवाजी को उसने पकड़ रखा था। उन्होंने जयपुर के राजा के सहयोग से मिठाई बहाने बांटने के बहाने, हमारा जन्म दिवस है, मिठाई की कुछ व्यवस्था हो जाए, इसलिए महाराज जयपुर ने औरंगजेब से कह करके मिठाई वाले को कहा जैसे बड़ी टोकरी में मिठाई ले जाएगा और वो मिठाई जेलखाना में कैदियों को बांटेंगे। शिवाजी मिठाई जाने के लिए अनुमति दे दी। मिठाई वाला अपने टोकरी में मिठाई लेकर के गया। ले जाने के बाद में शिवाजी ने मिठाई तो वहां पर रखवा दिया और स्वयं टोकरी में बैठ गए और कहा जे तुम कहना जैसे मिठाई देकर के खाली टोकरी में जा रहा हूं। बस उन्हें शिवाजी को बैठा करके पार कर दिया। जलखाने से जब पार हो गए एकदम चले महाराष्ट्र की तरफ में। जयपुर के महाराज जी ने, उनको पता था, उन्होंने व्यवस्था करवाई थी। उन्होंने जहां जहां उनको जैसी सहायता होनी चाहिए सब सहायता दी, जैसे कि अच्छी तरह से भग सके उनके लिए रथ या घोड़े उनके लिए ठीक कर दिया। बस एकदम जल्दी से जाकर के शिवाजी पुनः महाराष्ट्र में पहुंच गए और औरंगजेब एकदम बिगड़ गया। जयपुर का नरेश ने जो जो मंदिर बनाए हैं वो सब को हम तोड़ेंगे जहां ब्रज में होगा, इसलिए और कोई मंदिर को नहीं छेड़खानी की, किंतु इन्हीं मंदिरों को तोड़ने की, इसलिए इसके साथ तोड़ दिए। मथुरा में भी जयपुर का नरेश के द्वारा बनाया हुआ था उसको भी तोड़वा दिया, वहां पर मस्जिद बनवा दिया और सब ऐसे घोर उत्पात। रामचंद्र जी का वहां पर मंदिर तोड़वा करके उसको भी वैसा करा दिया। इसी तरह से सब तोड़वा करके ध्वंस करके उनको मस्जिद के रूप में इस रूप में सब किया। आजकल हिंदू लोग भी करें बहुत अच्छा किया, वैसा तो राजा ही नहीं हुआ अकबर और औरंगजेब के समान। राम का ये सब निकाल दिया हमारे पाठ्य पुस्तकों से। इस तरह से वहां पर गोविंद जी का शिव विग्रह वहां पर प्रकाश से ये जयपुर चले। इसके बाद में हम लोग बनखंडी में आए। बनखंडी में उसकी कहानी ये है, कथा शुभानंद जी ने वहां पर बतलाया था संक्षेप में। सनातन गोस्वामी का शंकर जी से बहुत मित्रता है, बहुत प्रीति है। प्रीति किससे होगी ये कोई जरूरी नहीं है, किसी से भी प्रीति हो जाए। शंकर जी कृष्ण के अष्टकालीय लीला का एक आविष्कारक हैं ये, उन्होंने पुराणों में उसका उल्लेख किया है, पार्वती जी को अष्टकालीन लीला का, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, बड़े रसिक भी हैं। तो ये शंकर जी से इनकी बड़ी मित्रता हो गई, इसलिए जहां भी रहते थे शंकर जी को जरूर ये दर्शन करते थे। वृंदावन में वो जाते थे गोपीश्वर महादेव का दर्शन करने अपनी कुटी से, जब गोवर्धन में रहते तो चकलेश्वर में, और काम्य वन में रहे तो कामेश्वर का, वहां पर नंदगांव में रहते तो नंदीश्वर का, इस तरह से जहां जहां रहते उनसे बड़ा प्रीति है, जरूर दर्शन करते। तो यहाँ जबकि वृद्ध हो गए, जब इतने या विरह में अत्यंत कातर हो गए, तो अपने कुटी से वहां जाना प्राय एक सवा मील नहीं जा पाते, तो शंकर जी को कष्ट होता था, ये वृद्ध आदमी है और यहाँ पर आते हैं। तो उन्होंने कहा जी देखो मैं बनखंडी में प्रकट होऊंगा तुम्हारे लिए, और वहीं पर हम दोनों मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर आ गए बनखंडी में, उनके भजन आश्रम से निकट किया और यहीं पर प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी प्रतिदिन उनसे मिलने के लिए बनखंडी में जाते थे, बनखंडी उस समय नाम था, अभी भी, अब तो बनखंडी है नहीं, तो अभी उसका नाम बनखंडी, सबसे गौड़ीय वैष्णव के का वो भी एक दर्शनीय स्थल और पूजा का स्थान बन गया। फिर उनको हम लोग दर्शन करके सेवा कुंज में हम लोग आए। आज हम लोगों का व्रत समाप्त होगा, ये काफी, हम लोगों का 4 महीना ही ठीक वैसा ही पालन करते हैं,
5 महीना
है, पुरुषोत्तम महीना बीच में आई, इसलिए ये इस बार 5 महीना, आज 5 महीने का व्रत हम लोग समाप्त करेंगे, कल समापन उसका होगा। सवेरे से आप लोग जिनको मुंडन करना होगा वो लोग मुंडन करना चाहते हैं, मुंडन ब्रह्मचारी सन्यासी और गृहस्थ में भी जो करना चाहते हैं मुंडन कर, स्त्रियां केवल नख कटने से और एक केस कटवा देने से उनका मुंडन हो जाएगा, जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए संपूर्ण करने की जरूरत नहीं है, ओनली एक केस को ही काट देने से उनका हो जाएगा, नख इत्यादि को काट लें तो उनका वो खौर कार्य हो जाएगा। और हम लोग कल हवन करेंगे, राधा कृष्ण का अभिषेक करेंगे और गुरु वैष्णव की पूजा करके उनको संतुष्ट करने की चेष्टा करेंगे, उनके लिए भंडारा भी करेंगे, जैसे कि उनको हम अपने एक इस 4-5 महीने का व्रत हम समापन करते हैं, उनकी कृपा हो। राधा कृष्ण का, राधा दामोदर जी का यहाँ पर अर्चन होगा, राधा दामोदर जी का हम लोग सवेरे पाठ होने के बाद में दर्शन कराएंगे, आज उनका दर्शन शायद था कुछ
महाराष्ट्र,
अभी जो दर्शन करना चाहते हैं जाकर के दर्शन कराएंगे, और कल सवेरे हम लोग एक बार मुंडन इत्यादि हो जाने के बाद में या सवेरे ही पाठ खत्म हो जाने के बाद में दर्शन करके तब अपना हम लोग इस व्रत को समाप्त करें। सभी लोग प्रस्तुत रहेंगे, जब अभिषेक होगा तब भी रहेंगे और यहाँ पर हवन का कार्य होगा उस समय रहेंगे, बाहर से भी कुछ वैष्णव सब लोग आएंगे, उनकी सब व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे राधा अष्टमी में हम लोगों ने मथुरा में किया था व्यवस्था, हम लोगों ने लिस्ट बना दिया है, ब्रह्मचारी लोग सब वैष्णवों का अभिवादन करेंगे, यथाजोग्य सम्मान करेंगे, उनको अच्छी तरह से सब लोगों को प्रसाद मिले, इसलिए अपने अपने सब कार्य लोग करें।
ओ हे राधे हे कृष्ण चंद्र भगत प्राण, हे राधे कृष्ण Ah, no.
राधा कुंदम गिरिवर्मा राधिका मातुवा न जीवाम त्वया बिना इति विज्ञान राधे तं माम चरणंतिके यत किंकरीषु बहुश खलु नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले यस्याकदारतनिधे विश्वानुजाय तत्केलिकुञ्जभवनान्तम् मनसिक्खा अतश्चेत् कष्टप्रदविकटपाशालीभि प्रकामं कामादि प्रकटपथपाति व्यतिकरै गले बद्धा हन्यहमिति बद्धिवत्मपगणि पुरुषं पुत्कारान् नवति स्वयथा स्वां मनयित। हे प्रियमन, जैसे हम लोगों के जीवन के पक्ष में काम क्रोध इत्यादि वस्तुगण, जैसे हम लोगों के जीवन में कहीं जा रहे हैं, डकैत लोग लूट लेते हैं और उसे जान से मार भी डालते हैं, तो को त्याग
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
जैसे हम लोगों के जीवन में कोई बहुमूल्य वस्तु हमको मिल गई और डकैतों को पता लग गया, तो जैसे वे आक्रमण कर हमें मार डालते हैं और वो सब कुछ लूट ले जाते हैं, ऐसे ही हमारे भक्ति के पथ में हमारा जो कृष्ण विषयनी जो मति हमको मिली महत संग में जो हमको कृष्ण विषयनी मति, अतः मैं कृष्ण का भजन करूंगा, ये हम हमारे जीवन में आए। किंतु काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य बाधा देते हैं और हमें लूट लेते हैं और हमें मार भी डालते हैं। मारना माने क्या, भक्ति पथ से विच्युत कर देते हैं, हटा देते हैं, भक्ति पथ के दूर कर देते हैं। के करे काम, काम माने तरह तरह की कामना, थोड़ी सी इच्छा हुई या भगवान का भजन करें, कुछ प्रवेश भी किया तो होगा क्या भाई, कामना मत करो। क्या कामना मत करो, पहले तो असत वस्तुएं मत खाओ, हिंसा में मत जाओ, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू मत खाओ, और पहले जो बतलाया छिप करके स्त्रियों का संग में, पुरुषों के संग में स्त्री बातें करने में बड़ा रस मिलता है, तो छिप करके उसको करना। आहार में भाई मैं भजन करूंगा, किंतु एक बाधा, वो बाधा क्या है, बहुत सी अभी लाख आए हैं, अभी परिवार के लोगों के साथ में मिल रहा है, कभी मांस मछली नहीं खाने से हमारा परिवार बिगड़ जाएगा, तो वो जो मती आई थी ऐसी कामनाओं के कारण बस लुप्त हो जाती है। एकदम आई कि अब भजन करेंगे, अब भजन करेंगे, किंतु इन क्षुद्र कामनाओं के कारण। अरे वो तो आज कहीं एक्सीडेंट हो गया, हम लोग यदि मर गए तो वो तो संग अपने आप छूट जाएगा, वो कितने दिन के लिए है। इसलिए क्षुद्र क्षुद्र लालसाओं के लिए वो परमात्मा की जो चिंतामणि मिली थी महत्व